ओम शांति। बाबा ने हम सभी का जीवन योगी जीवन बनाया है। इस योगी जीवन का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन सा है हम सभी के पास? हमारा जीवन योगी जीवन है, हमें भी उसका आनंद मिलता रहे और संसार को भी उसका दर्शन होता रहे कि इनका जीवन योगी जीवन है। उसका स्वरूप हमारा जीवन सहज जीवन हो जाए। आप सभी इस भट्टी में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि जीवन बिल्कुल सरल हो जाए, जीवन की सारी जटिलता, सारी उलझने समाप्त हो जाएं। ऐसा न हो कि ये जीवन भी इतना सुंदर जीवन छोटी छोटी उलझनों में उलझ कर रह जाए और जब समाप्ति हो और हम अपने पीछे के जीवन पर दृष्टि डालें तो निराशा दिखाई दे कि छोटी छोटी बातों में उलझ कर जीवन पूरा कर दिया, सहज जीवन हो जाए। सवेरे से शाम तक भी सहज रूप से आगे बढ़ें और संपूर्ण जीवन सहज लगे, पारिवारिक जीवन, लौकिक जीवन, क्योंकि आप सभी जिस क्षेत्र में रहते हैं, एक आपका अपना परिवार और दूसरा कार्य व्यवहार का क्षेत्र, दोनों से गहरा संबंध है स्थितियों का। उनको अगर ठीक नहीं किया गया तो चाहे उसके अलावा कितना भी प्रयास किया जाए, सब साथ साथ बैलेंस हो जाता है। इसलिए इस बात पर विशेष रूप से आप चिंतन करें, इस सारी भट्टी को अपने पूरे जीवन से जोड़ दें कि कहां कौन सी बात जीवन को जटिल बना रही है और उसको सरल कैसे किया जाए। तो जीवन सरल हो जाए, योग भी तभी सरल होता है, योग अच्छा होने से जीवन अच्छा होता है। इसके लिए कौन सी एक विशेष बात हम याद रखें? सरल, बिल्कुल सहज हो जाए जीवन। वो बात परसों सोमवार की मुरली में भी आई सवेरे, और अव्यक्त बाबा ने सदा ही विशेष रूप से उस पर ध्यान खिंचाया है। हल्कापन, यही एक बात है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया किसका? पतंग का। उसको ऊंचा उठाने के लिए हल्का छोड़ देते हैं, लूज। इस हल्केपन पर आप चिंतन करें, चित्त सरल रहे, वाणी में भी हल्कापन हो। हमारी वाणी हमें और दूसरों को, दोनों को कठिनाई पैदा करने वाली न हो। हमारे विचार भी इतने सरल हो जाएं कि हमारे विचार हमें ही न उलझाने लगे, ऐसे सरल हो जाएं, हमारी उलझन भी दूर करें और दूसरों की भी। इस बात पर जीवन में विशेष ध्यान देंगे, कौन सी बातें हैं जो सरल कर देती हैं विचारों को, स्वभाव को। बाबा ने आते ही हम सभी को सत्य ज्ञान दिया है। आज का टॉपिक विशेष रूप से सत्यता और एकाग्रता। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितना भी ज्ञान है, हम जानते हैं कि वो सभी इस जीवन को दिव्य बनाने के लिए है। जीवन से हटकर कुछ भी नहीं है। जितने भी सिद्धांत बाबा ने सुनाए, एक एक महावाक्य जीवन को प्रभावित करने वाला है। तो सत्य ज्ञान दिया बाबा ने पहले, जिसकी शायद अब हमारे सामने बहुत कम वैल्यू है, क्योंकि वो सत्य ज्ञान हमें बहुत पहले मिल गया। किसी को 10 साल पहले मिल गया, किसी को 20 साल पहले। सत्य जो अपने में बहुत बड़ी चीज है, जिसको सारा संसार खोजता है, आज भी खोज चल रही है, भटकन है, कितने स्कॉलर्स लगे हुए हैं, शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं क्या सत्य है, किस मार्ग पे चल के मनुष्य मंजिल को पहुंच जाएगा। परंतु जितने सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है उतना ही मानव का जीवन गिरता जा रहा है, टेंशन बढ़ रही है, कुछ सिद्धांतों में गलती है और हमें संपूर्ण सत्य मिल गया, ढूंढना भी नहीं पड़ा, तो वो सत्य हमारे लिए शक्तियां बन जाए। जब बिना सत्य के हम भटक रहे थे तब अनेक साधनाएं करना चाहते थे, और जब सत्य मिल गया तो कहीं हम अपने मन को और न भटकाने लगे हों, कहीं छोटी छोटी बातों में। इस बार अव्यक्त महावाक्यों में बाबा की एक बात बहुत प्रिय थी कि कई बच्चे छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि की लाइन को एंगेज रखते हैं, छोटी छोटी बातों में एंगेज रखते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन, तो बाबा से कनेक्शन हो ही नहीं पाता, उत्तर मिलते ही नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में एंगेज किया हुआ है। तो हम सभी जरा अपने जीवन पर एक दृष्टि डाल ले कि सवेरे से शाम तक कितनी हद की बातें, हद के विचार, छोटी छोटी बातें हमारे मन बुद्धि को एंगेज रखती हैं, व्यस्त रखती हैं। आप देखेंगे सारी छोटी बातें हैं, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बाबा की कहानी आज भी आप सुन रहे थे, बैगरी पार्ट में भी बाबा अडोल रहे। क्यों क्यों? एक पर बल, एक के बल पर सब कुछ कर रहे थे, एक के निश्चय पे जी रहे थे। ये थे बहुत बड़े विचार, ऊंचे विचार। लौकिक में भी एक बाप, दो चार बच्चे भी हों, तो क्या उसकी मन की स्थिति हो जाए अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए। परंतु बाबा छोटे विचारों से बहुत ऊंचे उठ चुके थे, इसलिए छोटी छोटी बातें उनके जीवन को कभी भी प्रभावित नहीं कर रही थी। तो विशेष रूप से जो बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं या जो बुजुर्ग हो चुके हैं शरीर से भी, उन्हें अब अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें निश्चित करके जाना है इस भट्टी से, जिस पर अब ये जीवन तेजी से संपन्नता की ओर बढ़े। क्योंकि समय क्या संदेश दे रहा है हम सबको, बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है समय का। और हम देखते हैं, हम अब देखते थे साक्षी होके कि हम में से जो लोग ये कहते रहे हैं कि पता नहीं विनाश कब होगा, बहुत देर हो गई, थक भी गए थोड़ा मन से, जब उन्होंने विनाश के थोड़े से सीन देखे तो कहने लगे विनाश ऐसे होगा क्या, उन्होंने सोचा था रात को सोएंगे और सवेरे नहीं उठेंगे, ऐसा कुछ क्षण भर में समाप्ति हो जाएगी, पर इस विनाश की चक्की में सारे संसार को पीसना होगा और एक तरह से ये विनाश काल धर्मराजपुरी बनेगी, ये संसार धर्मराजपुरी बन जाएगा। चाहे हम हो चाहे दूसरे लोग, सभी को अपने कर्मों का फल पूरा करना होगा। तो ऐसा चैलेंज देते हुए समय हमारे सामने आ रहा है, जिसमें दो चीजें संसार में दिनों दिन बढ़ेंगी, बढ़ भी रही हैं बहुत ज्यादा जो आप देखते हैं। एक बढ़ेगा बहुत ज्यादा टेंशन, तनाव बढ़ जाएगा चारों ओर, और दूसरा क्या बढ़ेगा, दूसरा एक चीज, दूसरी एक बहुत हम सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा बढ़ेगा संसार में भय। और हम सबको क्या करना होगा, हमें खुद भी निर्भय होना होगा और दूसरों को भी निर्भय बनाना पड़ेगा। भय बहुत बढ़ेगा, टेंशन भी भय बढ़ाएगी, और दुनिया में जो कुछ होगा उससे अविश्वास, अनिश्चितता, कब मर जाए, कब क्या हो जाए, ये संकल्प बहुत भयभीत करेंगे। तो लंबे काल से हम सभी ने अगर अपने पास सत्यता की शक्ति भरी होगी तो सत्यता सबसे पहले मनुष्य को निर्भय बनाती है। हमें सत्य ज्ञान मिला, हम जानते हैं, हम अपने ज्ञान को अगर तीन भागों में बांट ले, आत्मा, परमात्मा का और सृष्टि का, तो तीनों ही बातों का विस्तार हमें निर्भय बनाने लगा। सबसे ज्यादा भय मनुष्य को किस चीज का है, आज भी मृत्यु का, मौत का भय। और बाबा ने पहली ही बात से हमें मौत से निर्भय कर दिया। और मौत हमारे लिए, हम देखते हैं, सब आप देखते होंगे प्रैक्टिकल में, शरीर छोड़ते हैं बाबा के बच्चे भी, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, लेकिन स्थिति दूसरों की बहुत अच्छी रहती है। प्रैक्टिकल सत्य का स्वरूप, ऐसे ऐसे केस कि बिल्कुल यंग स्थिति में किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया और वो बहन जी रोए तक नहीं, वो दूसरों को सांत्वना दे, अपने में कितना बड़ा चमत्कार है कि कोई यंग जिसकी आयु अभी 25-30 साल हो, उसका पति मर जाए संसार में, उसको मनाने के लिए कितने लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, और यहाँ वो दूसरों को मनाए। तो ये सत्यता की शक्ति है। सत्यता की शक्ति के पेपर हमारे पास अब भी रोज आते हैं। उन पेपर्स में हम सत्यता की शक्ति के बल से पास हों, मान लो आपके ऊपर ऑफिस में कोई झूठा केस कर दिया गया, आप बिल्कुल ईमानदार हैं, जैसा आजकल होता है, ईमानदार व्यक्ति को सताया जाता है, आपको सताया जा रहा है, ऑफिसर्स को आपकी रिपोर्ट दे दी गई है, आपका प्रमोशन रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट रोका जा रहा है, उस समय अगर हमारे पास सत्यता की शक्ति है तो हम इन बातों से भयभीत नहीं होंगे। और कौन सी बात हमें सत्यता की शक्ति में स्थिर रखेगी? हमें हमेशा कुछ अपने पास ठोस सिद्धांत बुद्धि में ऐसे धारण कर लेने होंगे जो बहुत शक्तिशाली अनुभव कराएंगे। जैसे हमारे पास पवित्रता की शक्ति है, सभी के पास है, थोड़ी या बहुत, जितने जिसने अपनाई है। संसार का सबसे बड़ा बल माना जाता है पवित्रता, वो हमारे पास है, जहां इतनी बड़ी शक्ति है। दूसरी शक्ति हमारे पास कौन सी है? सत्य धर्म का बल। धर्म बहुत बड़ा बल है। अब जहां तहां सुनते होंगे कि विजय उधर है जिधर धर्म है, हमारे पास धर्म है, धर्म हमारी ओर है, हमारे विचार हमारे कर्म अब सत्यता की ओर बढ़ रहे हैं, धर्म का बहुत बड़ा बल भी हमारे पास है। तीसरा बल इससे भी आगे, स्वयं सर्वशक्तिवान ही हमारा है, न केवल हमारे साथ है लेकिन वो हमारा है। इस सत्यता पर जरा हम ध्यान दें, ये कितनी बड़ी सत्यता है कि भगवान ने आकर हमें कहा मैं तुम्हारा हूं। अगर इस एक बात में हम स्थिर हो जाए तो उन्हें कहीं भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने बड़े बड़े बल हमारे पास हैं, और भी बल जो दैनिक कार्यों में हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, योग अभ्यास हम कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं, दूसरों को सुख देते हैं या सेवा करते हैं, रास्ता बताते हैं, वो सब भी हमारे लिए बल बन जाता है। इतने बड़े बल से युक्त है हम सभी आत्माएं, हमें किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भगवान ही जब हमारा होकर हमारे पास आ गया है तो संसार में कितने भी मनुष्य की रिपोर्ट क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं होगा। परंतु प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है प्रैक्टिकल में जब ऐसा कुछ होता है? हम घबरा कर व्यर्थ संकल्प निर्माण करने लगते हैं, और हमारे व्यर्थ संकल्प क्या करते हैं? हाँ, ये बात हम सभी को अनुभवों से भी और ज्ञान के द्वारा भी समझ लेनी चाहिए कि हमारे व्यर्थ उल्टे संकल्प ही परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, परिस्थितियों को विपरीत कर देते हैं। और हमारे अपने अच्छे संकल्प, हमारी अच्छी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, इन सभी परिस्थितियों को समाप्त कर देती है। तो लौकिक में रहते हुए इस एक सत्यता की शक्ति का प्रैक्टिकल अभ्यास चलता रहे कि कुछ भी हो जाए हम इस सत्य में स्थित हो जाए। बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हमें निश्चय रहे कि इतना बड़ा बल हमारे पास है, कुछ होगा ही नहीं। मान लो आपकी भी दुकान है, आजकल क्या रसम चल गई है, आंदोलन होते हैं, दुकानों को जला दिया जाए या लूट लिया जाए। ये अब अंतिम समय में 2-4 साल से एक रीति बन गई है सभी आंदोलनों की, इसमें बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर हम अपनी सत्यता की शक्ति में बिल्कुल अडोल रहेंगे, एक बल, तो हम अनुभव करेंगे क्या, दूसरों का जल सकेगा, हमारा नहीं। हमारे पास आते ही उनके विचार बदल जाएंगे, या पुलिस आ जाएगी, कुछ भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। परंतु तब जब हमने अपना सब कुछ कहां इंश्योर किया होगा, बाबा के पास। बाबा बहुत पहले से जब ये बात कहते थे तो बहुतों की समझ में नहीं आता था, इंश्योर कर दो अपना सब कुछ मेरे पास। सब कुछ इंश्योर किया होगा, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, और वो अपना कार्य किसी ना किसी के निमित्त बनाकर कराता रहेगा। तो इस विनाश काल में ये सत्यता की शक्ति के द्वारा हम निर्भय होने का अनुभव करें, और देखते रहे कि जीवन में भय कहां कहां आता है। हम आपको एक छोटा सा काम चेकिंग के लिए दे देते हैं, कभी छुट्टी का दिन हो या कभी आप देखें अपनी चेकिंग करने के लिए, तो आप एक दूसरी बात की चेकिंग करें भय के साथ, कि हमारे पुरुषार्थ में सवेरे से लेकर और रात तक कितनी बार क्यों उठता है, क्यों प्रश्न उठता है। बाबा ने इस बार कहा, प्रैक्टिकल सत्य है कि टेंशन का कारण ये क्यों है। हमारे मन में सब कुछ देखते हुए और इतना बड़ा ज्ञान होते हुए भी, भविष्य को जानते हुए भी, क्यों उठता रहता है, और ये क्यों टेंशन और भय पैदा कर देता है। तो सवेरे से शाम तक एक दिन में आप चेक करके देखें कितनी बार मन में क्यों उठता है, और क्यों का क्या रिएक्शन होता है हमारे मन पर, किस तरह ये हमारे मन की गति को दूसरी ओर बोर्ड कर ले जाता है। तो निर्भय अवश्य बनना है, और इसके लिए अभी से और कौन सी बात हम पक्की करते चलें, भय हो ही न। संसार में जो कुछ होगा उसका तो एक दृश्य हमारे सामने है ही, क्या रखें बोलो, अच्छा होगा। लेकिन जब आपके अपने साथ हो जाए तब भी आप इसमें स्थित रहो कि सब अच्छा है, विचार करो जरा। दूसरों के प्रति ये संकल्प रखना तो सहज हो जाता है, परंतु जब वही बात अपने ऊपर आती है, हाँ, तो इसके लिए हमारे पास ज्ञान का भंडार भी और सत्यता का बल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक बात और हम इसके साथ अपने पास अभी से पक्की करते चले, जो एक स्मृति है, कोई विशेष अभ्यास भी नहीं है, कि हमारे साथ कौन है। बस ये एक बात जितनी हमारे विवेक में समाती जाएगी, ये उठती रहे मन में, इमर्ज होती रहे, ये नहीं जब काम पूरा हो जाए पीछे हमें याद आए कि नहीं बाबा तो हमारे साथ है, देखो ये बात ठीक हो गई। ये बात उठती रहे मन में, अभ्यास होता रहे। जैसे आपने देखा होगा, अब ये महाभारत की सीरियल एक चीज बहुत अच्छा सिखाती है, हम सबको अपने रूप से उसको देखना चाहिए, कि जिसकी दोस्ती हुई भगवान से उसकी किस तरह सुरक्षा होती रही, दोस्ती ने उसको विजयी बनाया। और ये भी स्पष्ट देखने में आता है जो भक्ति में गाते रहे कि भगवान अपने नियम भी छोड़ देता है प्यार में। अब प्रैक्टिकल हम उसे देखें, जरा लाए अपने अनुभव में कि किस तरह भगवान ने अपने नियमों को भी बदलकर अर्जुन की सुरक्षा की। आजकल के जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये मानने को तैयार नहीं कि श्रीकृष्ण भगवान थे, वो सोचते बड़ा भारी पॉलिटिशियन था जो हर जगह से बचाता रहा उनको। लेकिन बात यही है कि दोस्ती निभाने के लिए भगवान को भी अपने नियमों में परिवर्तन करना पड़ जाता है। परिवर्तन तो क्या होगा, मतलब वो हमारी पूरी मदद करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो हम उसको पहले तो ऐसा दोस्त बनाएं कि जब ऐसा भयंकर काल हमारे सामने आ रहा है तो उसमें बिना उसके साथ के हम इस समय को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दृश्य बहुत खतरनाक होंगे। तो उसको सच्चा दोस्त बना लें। और दोस्ती कब चलती है? समानता के साथ जब हम भी दोस्ती निभाते हों। अगर हम यही कामना रखें कि भगवान हमारा दोस्त है, बस वही सब कुछ हमारे लिए करता रहे, तो ये बात नहीं चलेगी। दोस्ती में दोनों दोस्तों को बराबर अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। और समय पर जब हम उस दोस्त को सहयोग देंगे तो उसका सहयोग स्वतः ही प्राप्त करेंगे। तो इस दोस्ती का हमें नशा भी हो। इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, दूसरे टॉपिक से संबंधित है एकाग्रता से। तो रोज सवेरे जहां हम योग अभ्यास करना चाहते हैं, जहां एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, वहीं इस बात को भी बढ़ाएं कि भगवान हमारा है, कितने समीप हैं हम उसके। इस समीपता को रोज रोज अनुभव में लाते जाएं अपने संकल्पों के द्वारा। तो योग केवल अभ्यास न रह जाए, लेकिन रोज सवेरे वो हमारा है और हम बहुत समीप हो गए उसके, इन संकल्पों से अपने मन को भर दें और इसका अनुभव करें। ऐसी बात आपको अपने पास कुछ जरूर निश्चित कर लेनी चाहिए, जिनका रोज एक बार रिवीजन हो अपने मन में, अभ्यास में रोज जिनको एक बार जरूर दोहराया जाए। सवेरे दोहराएं, कार्य व्यवहार में दोहराएं, और या रात को दोहराएं, ताकि जो ऊंची ऊंची स्मृतियां हैं वो हमसे भूली न रहें। यहाँ जब आप सब आते हैं तो ये अच्छे अनुभव क्यों होते हैं आपको? यहाँ आपने इसका विश्लेषण तो किया होगा, अनेक बार आप आए हैं, कि वहां जाते ही अनुभवों के लिए मेहनत है और यहाँ आने पर सरलता है। वाइब्रेशंस तो हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जिस पर हमें और ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य के अनुभव में तो आती हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि अनुभव में आ क्यों रही है। जैसे कोई चीज खाने मीठी लग रही हो, लेकिन ये पता ना हो कि इसमें चीनी पड़ी है या और कुछ, या इसका अपना ही स्वाद मीठा है। तो हमें तीन बातों पर जरा विशेष ध्यान देना चाहिए जो सत्यता की शक्ति से जुड़ी हुई है। बाबा की मुरली में है, अभी अभी आया है। एक तो हम सभी अभी तक भी अपनी शक्तियों को नहीं जान पा रहे हैं। हमारे पास ही बहुत शक्तियां हैं और ये बिल्कुल संभव है कि आगे चलकर हम सभी को यह आभास होगा कि अरे हमारे पास तो ये शक्तियां थी, ये वरदान तो मुझे ही मिला हुआ था, लेकिन मैंने इसका कोई लाभ नहीं उठाया। एक तो हमें अपनी संपूर्ण शक्तियों का, जो सत्यता है हमारी अपने बारे में सत्यता, उसका संपूर्ण रूप से ज्ञान हो। और दूसरी चीज, हम जितने महान हैं, अर्थात हमारा जो स्वमान है, उसकी सत्यता का भी हमें ज्ञान हो। हम बहुत बड़े हैं, वास्तव में बड़े हैं, लेकिन क्या हम उतने ही बड़े अपने को जानते हैं, मानते हैं? ऐसा भी नहीं है। जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, जब लौकिक परिवार में जाते हैं, तो वो स्वमान और महानता विस्मृत हो जाती है। और तीसरी चीज, हमारा कितना बड़ा कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, इसकी सत्यता को भी हम जाने। तो हमारा स्वमान, शक्तियां और जिम्मेदारियां, इन तीनों को जैसे जैसे हम जानते जाएंगे, हमारा स्वरूप महान बनता जाएगा और प्रत्यक्षता के समीप होते जाएंगे। बाबा के ये महावाक्य थे 69 में कि तुम बच्चे इन तीनों चीजों को अभी तक स्वयं ही नहीं जानते हो, तुम्हारे ही आगे ये प्रत्यक्ष नहीं है तो संसार के आगे प्रत्यक्ष कैसे होगा। तो आप विचार करें, पहली सत्यता हमारे बारे में, हमारे स्वयं के बारे में, हम कौन हैं? कौन है हम? नहीं, यही हम आपसे सुनना नहीं चाहते, ये तो पहली क्लास वाले बच्चे बता देते हैं। हम आत्माएं हैं इतना ही हमें सत्य ज्ञान नहीं मिला है। तो जैसा जिसने अपने स्वरूप को जाना होगा, ये आप अच्छी तरह अंडरलाइन कर लें, जिसने जैसा अपने को माना होगा जाना होगा वो वैसा ही बन जाएंगे। अब आप देख लो आप कौन हैं, आप स्वयं देखो। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप सभी, जो भी बातें कही जा रही है सब ठीक है। अब अपने अपने लिए इनमें से कुछ निश्चित कर लो। जैसे आप लौकिक में देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप बड़े हुए हैं तो आपको अपना लौकिक स्वमान भी बड़ा हुआ है। जब बच्चे थे तो कुछ और बात थी, युवा हुए कुछ और बात, बुजुर्ग हुए अब कुछ और बात, और जैसे जैसे समाप्ति की ओर जीवन चलता है तो एक समझदार मनुष्य का स्वमान कुछ और गहराई की ओर चलता है। तो अपने स्वमान को जितना ऊंचा हम स्वयं रखेंगे, हम सब महान हैं। बाबा ने दो बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, एक तुम हाईएस्ट और एक होलीएस्ट हो। हाईएस्ट सबसे ऊंचे और सबसे अधिक पवित्र। और बाबा के ये महावाक्य भी बड़े प्रेरणादायक हैं कि जब ये दोनों बातें तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप में रहने लगेगी, तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे संसार के आगे। तो हम हाईएस्ट हैं, सबसे महान। अब आप देखें क्या हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है, हमारे विवेक में ये बात समा गई है कि भगवान ने अपने बाद हमें ही सबसे महान बनाया है। अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं, सारे वरदान हमें दे दिए। भगवान जब हमारे पास आएगा, आप खुद भी विचार करें, आप अपने किसी संबंधी के पास जाएं तो आप कभी नहीं सोचेंगे खाली हाथ जाएं, कोई अच्छी चीज ले जाएं। तो बाबा आया है केवल ज्ञान लेकर नहीं, और बहुत सारी चीजें लेकर आया है, कई शक्तियां और कई वरदान सूक्ष्म रूप से उसने हरेक आत्मा को दे दिए हैं। उस सत्यता को जरा पहचान लें, उसको हल्का ना समझ लें। तो जितने महान हम अपने को स्वीकार कर लेंगे, आप सोच लो कि मैं इस संसार की पूर्वज आत्मा हूं और मेरे ऊपर सारे संसार की पालना की जिम्मेदारी है। मेरा एक एक संकल्प दूसरों की पालना करे, सुगंध फैलाए, मेरा एक एक बोल दूसरों को बल दे, निराश न करे, उन्हें निर्भय बनाए, मेरा एक एक कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, विधान बन जाए, फॉलो करने जैसा बन जाए। आप इस तरह का चिंतन चलाएं तो आप देखेंगे ये श्रेष्ठ स्वमान एक बहुत बड़ा काम करेगा, हमारे छोटे सारे संस्कारों को जो दुख देने वाले हैं, जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, वो सहज बदल जाएंगे। संस्कार परिवर्तन की मेहनत समाप्त हो जाएगी अगर हम अपने इन ऊंचे संस्कारों में स्थित रहने लगे। तो स्वीकार कर लें कि हम इतने होलीएस्ट हैं, बहुत अच्छा एक संकल्प है, उसे आप समा लें अपने अंदर कि हमसे सारे संसार के मनुष्यों को, स्त्री पुरुष को, पवित्रता का दान मिलता रहे, पवित्रता का बल मिलता रहे, हमारी दृष्टि जिस पर पड़े उसे पवित्रता के वाइब्रेशंस मिले, प्रकृति के जिस पदार्थ पर, जिस पेड़ पौधे पर, जिस जानवर पर, जहां भी हमारी दृष्टि पड़ जाए उनमें पवित्रता के वाइब्रेशंस पहुंच जाएं। इतने होलीएस्ट हैं हम, इतने पवित्र हैं। ये एक संकल्प ही पवित्रता के बल को बढ़ाने के लिए काफी होगा। बस ऐसी महानता, ऐसा स्वमान हम अपना स्वयं रख लें तो हम देखेंगे ये सत्यता का बल न केवल हमें अनुभव होगा, हमारे सारे कार्य व्यवहार को प्रभावित करेगा, जीवन को सरल बनाएगा, समस्याओं को प्रभावित करेगा। समस्याएं अगर हमारे जीवन में बहुत हैं तो हमें ये देखना चाहिए गहराई से कि उसका कारण हमारा कोई विपरीत संकल्प है, उसको ठीक करें। बाबा बहुत पहले से ये बात कहते आए कि जीवन में अगर समस्याएं हैं तो एक बात चेक करो कि सवेरे उठकर देखो कि कहीं बाबा से कनेक्शन लूज है, कोई चीज ढीली हो गई है। न केवल योग का कनेक्शन लूज,
लेकिन किसी मर्यादा का कनेक्शन लूज हो गया है, कोई अवज्ञा हो रही है, तो जीवन में विघ्न आ रहे हैं, समस्याएं कट नहीं रही हैं, लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ये सत्य है, अनादि सिद्धांत है, जो स्वमान में रहेंगे उनको सारा विश्व सम्मान देगा, प्रकृति भी सम्मान देगी, जो योगी होंगे उन्हें सारा विश्व सहयोग देगा, प्रकृति भी सहयोग देगी। ये अनादि सिद्धांत है। अगर ऐसा हमें नहीं हो रहा है, कहीं आपको अनुभव हो रहा है कि आपके बच्चे ही आपको सम्मान नहीं देते, आपके बच्चे ही आपको सहयोग नहीं देते, विरोध कर रहे हैं, तो बच्चों को दोष देने की बजाय आप स्वयं को चेक करें, हम स्वमान में स्थित नहीं हैं, इसलिए इस विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह हमारी जो अनंत शक्तियां हैं, जो हमें प्राप्त हुई हैं, उनका भी स्पष्ट आभास हमारे पास होना चाहिए। तो शक्ति के बारे में हम अपनी शक्तियों को पहचाने। बाबा की एक बात जो मैंने कहा कि आप रोज कुछ बातें दोहराएं और उनका अभ्यास करें, उनमें एक बात ये आप अवश्य जोड़ लें, बाबा की मुरलियों में ये बात सदा ही आती रही है शक्ति के बारे में। बाबा ने जैसे ही हमें अपना बच्चा बनाया तो हमें सर्व शक्तियां भी दे दी, वरदान के रूप में दी, सौगात दी। तो हमें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाए कि सारी शक्तियां हमारे पास हैं और हम कौन हो गए, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये योग के लिए भी बहुत अच्छी बात है और अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए भी। रोज एक बार, एक दो तीन मिनट इस एक स्वरूप की ओर अपने को ले चलें कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बाबा ने सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं और बाबा से आई हुई आठों शक्तियों ने मेरे चारों ओर एक कवच बना दिया है, प्रभा मंडल। ऐसा अपने स्वरूप को एक बार देखें, मेरे चारों ओर शक्तियों ने एक घेरा बना दिया है, चारों ओर शक्तियां विराजमान हैं, शक्तियों का मालिक हूं मैं। तो रोज रोज ये संकल्प अपने को देने से हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी। और ये बाबा के महावाक्य हैं जिन पर हमें अनुभव करना चाहिए कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में स्थित रहते हैं, वो अपने संकल्प से जो चाहे कर सकते हैं और करा सकते हैं। जैसे भगवान ने अपने समान पावर हमें दे दी है, जो चाहे करो, जो चाहे कराओ, परंतु तब जब मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो अगर ऐसा अपने को शक्तियों से घिरा हुआ एक बार अनुभव करेंगे, आने वाले समय में एक विशेष लाभ हम सबको और होगा। जैसा हम देखते हैं विनाश में अभी भी और आगे भी अकाले मृत्यु बहुत होंगी और उससे क्या होगा, इविल सोल्स बहुत भटकेंगी, क्योंकि इन्हें शरीर नहीं मिलेगा, दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे। मान लो किसी को जिंदा जला दिया गया तो वो बहुत दुखी होकर शरीर छोड़ेगी आत्मा, और वो भटकेगी तो दुख स्वरूप रहेगी, जहां जाएगी दुख देगी। तो इविल सोल्स के प्रभाव बहुत देखने में आएंगे चारों ओर, लेकिन अगर हम इस स्वरूप में रहते होंगे तो हम तक आने का वो साहस नहीं कर सकेंगी, बल्कि हमारी उपस्थिति में दूसरों पर भी वार नहीं कर सकेंगी। हमें अपने इस स्वरूप का भी ज्ञान रहे कि जहां हम होंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, वहां अनेक आत्माओं को सुरक्षा मिलती रहेगी, हमारी उपस्थिति अनेकों को निर्भय और निश्चिंत बनाएगी। तो ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान का अपना स्वरूप भी इमर्ज करें रोज एक बार। एक इविल सोल के प्रभाव से बचेंगे और दूसरा एक और चीज कहीं कहीं बाबा के बच्चों को सामना करनी पड़ती है, वो क्या है, तांत्रिकों की रिद्धि सिद्धियों का प्रभाव, जिससे कहीं कहीं बाबा के बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं कि फलाने तांत्रिक के पास तो बड़ी अच्छी पावर है, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ इलायची निकाल सकते हैं हाथ में, घड़ी ला के दे सकते हैं, है? बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो मनुष्य को पवित्र नहीं बना सकते, न खुद बनते, न किसी मनुष्य को देवता बना सकते, न मुक्ति में जाने की गारंटी दे सकते। इस सब से भी हम बच सकेंगे। एक अभी अभी का छोटा सा अनुभव, एक भाई का अनुभव, उन्होंने एक मंदिर में एक प्रदर्शनी लगाई। जब प्रदर्शनी बहुत अच्छी चल रही थी तो वहां के पुजारी को पता नहीं क्या हुआ, उसके पास कुछ सिद्धि थी, उसने निमंत्रण दिया था, उसने कहा कि आप मेरे से अपनी शक्ति का अजमाइश करो, अगर तुम्हारी शक्ति ज्यादा हो तो यहाँ प्रदर्शनी तुम्हारी चलेगी, नहीं तो नहीं। उसको बहुत समझाया कि हम इन मंत्रों में तांत्रिक सिद्धियों में हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको अपना नशा उसको था कि मैं इन्हें कुछ दिखाऊं, अपना चमत्कार दिखाऊं सब लोगों को, वो नहीं माना। आखिर इस भाई ने कहा कि अच्छा चलो आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो, मुझे एक मिनट दे दो। तो उसने कहा भले एक दो तीन मिनट जो तुम्हें चाहिए। तो तब तक ये भाई अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित हो गए बिंदु रूप में, और उसको कहा अब आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो। तो वो पंडित जी मंत्र पढ़े और बार बार उसके ऊपर चावल हल्दी दाल फेंके, लेकिन उसको कुछ न हो। एक दो मिनट उसने खूब किया ये सब, और आखिर में क्या किया होगा जो ये करते हैं, उसके पैर पकड़ लिए कि भाई तुम्हारी शक्ति ज्यादा है, हमारी नहीं। कहीं कहीं हम सबको अपनी शक्तियों का आभास नहीं होता है। आपने अगर सुना हो शास्त्रों में वो बातें आती हैं कि ऋषि लोग यज्ञ किया करते थे और कृत्या को उत्पन्न करते थे, कृत्या एक राक्षस एक राक्षसी, और उसको आज्ञा देते थे कि जाओ फलाने का संहार कराओ, और वो उनकी आज्ञा का पालन करती थी। ऐसी सिद्धियां तांत्रिकों के पास होती हैं, अब तो बहुत कम रह गई। अगर कहीं आपको ऐसी शक्तियों का सामना पड़ जाए, किसी ने आपके ऊपर ऐसी कृत्या का प्रयोग कर दिया हो, तो आप फौरन अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, कवच बना दिया है। और आप देखेंगे अगर वो कृत्या का प्रयोग भी आपके ऊपर हुआ होगा तो वो निष्फल जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं आपने कहीं ये संकल्प कर दिया कि ये कृत्या उसी के पास चली जाए तो वो जाकर उसका संहार कर देगी। उनके वहां ये नियम है कि अगर दूसरा व्यक्ति पावरफुल है, सिद्धियों के नियम है, और वो कहीं उस कृत्या को ऑर्डर दे दे के वापिस जाओ तो वो खाली नहीं रहती, वो उसको ही नष्ट करेगी जिसने उसको छोड़ा है। जैसे शंकराचार्य के साथ ऐसा ही हुआ, आदि शंकराचार्य के साथ, तो तांत्रिकों से क्योंकि उसका विरोध था तो तांत्रिकों ने ऐसे ही एक कृत्या को उत्पन्न करके शंकराचार्य के वध के लिए छोड़ दिया। जब शंकराचार्य को ऐसा आभास हुआ तो उसने उसको संकल्प से वापस कर दिया और उसने जाकर उसका ही संहार किया जो उन तांत्रिकों का हेड था। तो इस तरह ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अपने में उतनी शक्तिशाली है जितनी शिव बाबा की शक्तियां, जितना शिव बाबा के पास अपना सब कुछ है, शक्तियां हैं, शक्तिशाली स्वरूप है, वही हमारे पास भी होगा। लेकिन लंबे समय से हमें इस संकल्प को प्रैक्टिकल स्वरूप देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि रोज कम से कम एक बार सवेरे सोते समय ऐसी कोई समस्या भी आ जाए, कभी आप देखो कि आपके ऑफिस में आपके कर्म क्षेत्र पर वातावरण बिगड़ गया है, आपके विपरीत हो गया है, लोग आपके विपरीत बोल रहे हैं, कुछ अशांति हो गई, लड़ाई झगड़ा होने लगा है, तो एक सेकंड के लिए अपने को उससे हटाकर इस संकल्प को ले आओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैलती हैं। आप इसका तुरंत फल देखेंगे कि वहां का वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा। ये प्रयोग आप रोज कर सकते हैं। जब आप देखें आपके घर में अशांति हो गई तो अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर ऐसा संकल्प करो कुछ क्षणों के लिए कि मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं और मैं पूर्वज आत्मा हूं जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सारे संसार में शांति की स्थापना करना। तो ये प्रैक्टिकल प्रयोग अनुभव देंगे और ठीक समय पर वैसा अभ्यास, वैसा एक्सपेरिमेंट आने वाले समय में हम कर पाएंगे। ऐसे ही तीसरी चीज, हमें अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो। बहुत बड़े बड़े काम हमें करने हैं, आप उन्हें गिन सकते हैं। प्रकृति को पावन करना है, इससे पहले स्वयं को संपूर्ण बनाना है। जन्म जन्म का भाग्य हमें निर्माण करना, इतना भाग्य, ऐसा भाग्य जो किसी भी जन्म में हमें कठिनाई न हो, भक्ति काल में भी कठिनाई न हो। सारे संसार के वायुमंडल को पावन करना है, भटकती आत्माओं को शांति देनी है, मुक्ति देनी है। कितने बड़े बड़े काम हम सबके ऊपर हैं, तो जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हो वो क्या करेंगे, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इधर उधर छोटे मोटे संकल्पों में नहीं रह सकते। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी बाबा की बात। बाबा ने कहा, कई बार कह चुके हैं, अभी पीछे सुना कि बाबा को हंसी आती है जब बाबा ये देखते हैं कि इतनी बड़ी महान और जिम्मेदार आत्माएं छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट कर रही हैं। ये भूल गए कि इन्हें क्या क्या करना है और कहां ये समय लगा रहे हैं। तो अपने कर्तव्यों की स्मृति हमारे सारे वेस्टेज को समाप्त करेगी और ये सब मिलके सत्यता की शक्ति हमें निर्भय बनाएगी और महान बनाएगी। तो हम अपने में सत्यता का बल भरते चलें और ये स्लोगन रख लें, जहां सत्यता है वहां भय की आवश्यकता नहीं, जहां धर्म का बल है, जहां पवित्रता का बल है और स्वयं भगवान हमारा है, वहां विजय हमारी ही है, कुछ भी हमारे विरुद्ध नहीं होगा। ये चीजें हमें बल देंगी और जीवन को सहज बनाएंगी। अब दूसरी बात, एकाग्रता की शक्ति। हम सब जानते हैं और ये ठीक है, वो सिद्धियां तो हमें नहीं दिखानी, छोटी सिद्धियां, लेकिन बहुत बड़ी सिद्धियां भी तो हैं, जो बाबा ने भी कहा है कि ऐसा समय आएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी और लोग रोग मुक्त हो जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी और उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुमसे एक शब्द सुनेंगे और वो उनके लिए वरदान बन जाएगा। ये भी तो बहुत बड़ी सिद्धि स्वरूप की स्थिति है हमारी। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये अब तक? योग तो हम भी कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से। इसका कारण यही है कि जितना सरल और शक्तिशाली योग हमें प्राप्त है उतना अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम अभ्यास। कितने बाबा के बच्चे हैं जो रोज सवेरे उठ के सवेरे का आनंद लेते हो, गिनती के मिलेंगे। आधे लोग तो नियम निभाते हैं और आधे नियम निभाने में भी अनुभव नहीं कर पाते, बहुत हल्का योग रहता है, बहुत हल्का। अगर सचमुच हम इस सरल और शक्तिशाली योग को अभ्यास में ले आए तो हमारे पास सिद्धियां तो छोड़ो, क्या बन जाए हम, सिद्धि दाता, भक्तों को सिद्धियां देने वाले हैं भी प्रैक्टिकल। हम सबसे ही तो सिद्धियां मिलती हैं भक्तों को, कहां से सिद्धियां ले रहे तांत्रिक, किसी देवी या देवता की मूर्ति बनाई हुई है, हमारी मूर्तियों से सिद्धियां ले रहे हैं। और हम जब प्रैक्टिकल में हैं, चेतन में, तो हम सिद्धि स्वरूप नहीं बन रहे। उसका कारण हम अपने असली स्वरूप को भूलकर इस अभ्यास की बहुत कमी में हैं। तो एक सबसे पहली चीज एकाग्रता को बढ़ाएगा अभ्यास। अभ्यास जब होने लगता है तो बहुत सारी चीजें कठिन भी सरल हो जाती हैं। अब हम इस एकाग्रता पर कुछ थोड़ी सी चर्चा करें। आप सब चिंतन करो, 3 मिनट हम सबको योग में बैठा दिया जाए, 3 मिनट में भी मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले कितने होंगे, या 3 मिनट में बहुत संकल्प चल जाते हैं, है ना? प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं इसके बारे में कि कोई भी मनुष्य 10 मिनट तक एकाग्र हो सकता है, उसके बाद उसके ब्रेन में एक ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉकेज रुक जाएगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर शुरू करना पड़ेगा। तांत्रिक लोगों के सिद्धांतों में है, साधनाओं में, अगर कोई व्यक्ति 32 मिनट तक एकाग्र हो जाए तो उसको जैसी चाहे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और बाबा ने हम सबको क्या बताया कि तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप ही एकाग्र हो, जब चाहे। एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि सतयुग में लंबा समय राज उसको मिलेगा जो यहाँ लंबा समय एक संकल्प में स्थित हो सकेंगे। बाबा ने ये सिद्धांत सुनाया। तो उनकी छोटी छोटी सिद्धियां और हमारा लंबे समय का स्वर्ग का राज्य, कितनी बड़ी बात हो गई। हमारी एकाग्रता ऐसी शक्तिशाली और श्रेष्ठ चीज है। तो हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है, क्या क्या करना पड़ेगा? पहली चीज तो वही कि अब तपस्या वर्ष भी आ रहा है, तो आप सभी ये निश्चय करके जाएं कि सवेरे जल्दी अवश्य उठना है। पहली बात तो उठना है, उसके लिए जल्दी भी सोना पड़ेगा, और जल्दी सोने के लिए आपको अपने कार्य व्यवहार या लौकिक दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा, वो आपको करना चाहिए। दूसरी चीज, भोजन थोड़ा रात का हल्का, ताकि सवेरे सहज रूप से उठें, फ्रेश रहें। तीसरी चीज, सोने से पहले अपने को ज्ञान से भरपूर करना, ताकि सारे दिन का धंधों का प्रभाव समाप्त हो जाए। ज्ञान के प्रभाव में, अच्छे संकल्पों के प्रभाव में सोएं। जब आप उठ जाएं, तो अब आपको इस बात पर ध्यान देना है कि नींद ना आए योग में। ये नहीं कि उठ तो गए, बहुत लोग करते हैं 2 बजे उठने का नियम बना लेते हैं तो नींद आ जाती है, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। आप 3:30 ही उठें, बहुत जल्दी उठना चाहते हैं तो 3 से 5 अगर योग का आनंद लिया जाए तो 2 घंटे का योग उस टाइम भी एकाग्रता में बल देगा और सारा दिन भी एकाग्रता का अच्छा अनुभव रहेगा, मन भटकेगा नहीं। तो उसके लिए भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास करें। पहले अपने को स्वमान में स्थित करें और इस संकल्प को दोहराएं, कितने समीप पहुंच गए हम भगवान के, इतने समीप कि वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ। कितना समीपता है, भगवान कह दे कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे थे मुझे। इस समीपता को अनुभव करते हुए, स्वमान में आते हुए, फिर अपने को एकाग्र करने का अभ्यास करें। एक एक मिनट से एकाग्रता बढ़ाओ, आधा आधा मिनट से बढ़ाओ, आधा आधा मिनट करो, फिर रूढ़ियान करो, फिर आधा मिनट करो, फिर रूढ़ियान करो, चिंतन करो, आधा मिनट करो, इस तरह बढ़ने लगेगी। तो पहली चीज तो सवेरे का समय आनंद में बीते, और इसके लिए आप ये नियम बना लें अब कि सवेरे के समय आपको पूरा मौन रखना है। ये तो हो सकता है ना, इसमें कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम भी हो घर में तो कम से कम बोल कर उसको पूरा करें, ताकि सवेरे का समय मुरली सुनने तक अच्छी स्थिति में बीत जाए। यही बात जीवन पर बहुत भारी प्रभाव डालेगी। अब और आगे चले, एकाग्रता के लिए और किस चीज की जरूरत है, क्या भटकाता है मन को? एकांत तो चाहिए, वो भी एक नियम आप बनाएं, एकांत भी चाहिए और अंतर्मुखता भी। हम अभी इस बात पर आ रहे हैं कि मन को भटकाता क्या है, कौन सी बातें भटका रही हैं? और बताओ, और सोचो। एक भटका रही हैं अनावश्यक इच्छाएं, इच्छाएं। एक बात अब ये भी ध्यान देंगे कि जैसे जैसे संसार की स्थिति बिगड़ेगी, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस बढ़ेगा, तो हम सबको केवल समाचार सुनने का शौक न लगा रहे। ये भी एक बड़ी सूक्ष्म माया है कि क्या हो रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए सुन लें, लेकिन उसमें इंटरेस्ट हो जाए, रेडियो कान को लगी रहे, वो गलत है। उससे हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, जबकि हमें पता है। समाचार सुन के यही तो आप सोचेंगे ना, ऐसा क्यों हो रहा है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो उसने ऐसा कर दिया, इतना अच्छा चल रहा था, कैसे लोग हैं स्वार्थी पापी, अनेक विचार आएंगे। तो इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे समय बढ़ेगा आगे समाचार भी बढ़ेंगे, उनको सुनने में अगर हम लग गए तो हमारी शक्तियां छिन्न भिन्न होंगी। इसलिए इन्फॉर्मेशन के लिए आप सुने, उस पे अपने विचार न दौड़ाएं, उसको अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट न बना लें, चर्चाओं का सब्जेक्ट न बना लें। क्योंकि हमें पता है, मैं जब समाचार सुनता हूं तो मैं बताऊं आपको, मेरा जो दृष्टिकोण रहता है कुछ साल से ही, मैं हमेशा ये देखता हूं कि मुझे केवल ये जानना है कि शंकर की क्या प्लानिंग है विनाश के लिए, किस किस तरह से वो संसार को घेराव में लाता है और संसार समाप्त होगा, कितनी सुंदर प्लानिंग है इस ड्रामा में, कौन कब क्या करता है, बस केवल इतनी जानकारी के लिए। उसमें हम अपने कर्तव्य को न भूलें, दोनों कर्तव्य हमारे ही हैं, विनाश भी कराना और आत्माओं को शांति भी देना। जितना बड़ा काम है, कोई सुन ले कि इधर कुछ लोग ऐसे बैठे जो तपस्या कर रहे विनाश के लिए, तो कैसी अजीब बात लगेगी, परंतु है सत्य, हमारी प्योरिटी और हमारा योग इस संसार को पवित्र करेगा तो अपवित्रता का संहार हो जाएगा। तो इच्छाएं मन को बहुत भटकाती हैं और इच्छाएं मनुष्य की दिनों दिन बढ़ती ही जाती हैं। और इच्छाओं के मूल में एक शब्द है, कौन सा? नहीं, इच्छा क्यों पैदा हो रही है, इच्छा क्यों पैदा हो रही है? आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है ना। बाजार में जाएंगे, देखेंगे ये नई चीज आई है, उसकी आज तक आवश्यकता नहीं थी, देखते ही आवश्यकता फील होने लगती है और उसको अपने पास लाने का प्रबंध करने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जरूरी भी हैं, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि समय फिर से लौट कर वहीं आ जाएगा जहां हम कुछ साल पहले थे। बिजलियों का सुख, एयर कंडीशन का सुख, जितने भी बनाए हैं ना हमने आर्टिफिशियल, ये सब खत्म होने हैं जरूर। इसलिए ये भी एक मनुष्य की सजाओं का आधार बन जाएगा, जिस पे आधार हो गया, देख रहे हैं ना हम, पेट्रोल डीजल पे आधार हो गया संसार का। जब ये नहीं था तो भी संसार चलता था, बड़ा सुख था, जब ये बढ़ा पॉल्यूशन बढ़ गया और समस्याएं बढ़ गई, इंडस्ट्री बढ़ी, सब काम काज तो बढ़ गए परंतु समस्याएं बढ़ी और मनुष्य आधारित हो गया, अधीन हो गया साधनों के। तो बाबा हम सबको ये पक्का कराते हैं कि तुम्हारे सभी साधन और सभी आधार अंत में निकल जाएंगे, इसलिए अभी से अपने जीवन को ऐसा जियो कि जो कुछ अब हमारे पास है उसको हम यूज कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, ठीक है। कल हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी यही आनंद रहे, वो सोच सोच के हम परेशान ना हो कि कल हमारे पास ये था आज क्या होगा, ये नहीं है। हम तो ऐसा खाते थे, हम तो ऐसे रहते थे, हमारे पास यही है सुख के साधन थे। अगर इस तरह की भावनाएं हमारे पास रह जाएंगी तो आने वाला समय बड़ा कष्टदायक होगा, क्योंकि ड्रामा में ये है, बाबा ने पहले से ही कहा हुआ, सारे आधार और साधन समाप्त हो जाएंगे, जिनको तुमने अपना बनाया हुआ है वो तुम्हारे अपने नहीं रहेंगे। तुम्हें एक बार महसूस होगा कि अपना तो केवल एक ही है, अगर उससे अपनापन नहीं जोड़ा है तो बाकी सारी अपनी चीजें दुखदाई हो जाएंगी। इसलिए इच्छाओं को कम करते चलें, ये आवश्यकताएं इनके अधीन हम न हो जाएं, ये तो बढ़ रही हैं। इच्छाओं पे तो पहले से ही लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आप जानते हैं अनुभवों से, इच्छाओं का न कहीं अंत है और न इच्छा पूर्ति होने पे आनंद है, संतुष्टि भी नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है। इसलिए जिसकी न शुरू में सुख न अंत में सुख, शुरू हुई इच्छा तो भी दौड़ाने लगती है हमको, तन को भी दौड़ाती है और मन को भी, और जब पूर्ण हो जाएगी तो क्षणिक दुख दे सुख देकर समाप्त हो जाएगी। ऐसी इच्छाओं को कम करें। आप देखें, अगर आपको अपने परिवार के लिए भी कुछ संग्रह करना पड़ता है तो आप उसे साक्षी भाव से करें, स्वयं उसमें अपने को इन्वॉल्व न कर दे, बहुत ज्यादा लगा न दे उसमें। ठीक है, आपको बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, बच्चे कह रहे हैं टीवी घर में चाहिए, आप देखते हैं बच्चों को टीवी नहीं देते, वो इधर उधर देखने जाते हैं, बुरे संग में रहते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, आप उन्हें टीवी ला कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि टीवी में आपका भी शौक बढ़ जाए और आप उसके ही आगे बैठे रहें, वो समझ ले तबीयत खराब हुई है तो मन लगने के लिए टीवी देखते रहे अच्छा साधन है। ऐसे संकल्प बहुतों के पास आते हैं तो मन लगाने का साधन टीवी नहीं है, टीवी से मन नहीं लगता है। मन तो लगता है वही जहाँ मन को असली सुख मिलता है। अगर इन सब में सुख होता तो आज होता सुख संसार में। विदेशों में तो घर घर में अपनी अपनी टीवी है, साथ रखते हैं, जेब में टीवी है, सुख नहीं है उसमें, क्योंकि ये मन की विशेषकर हमारी ब्रेन की शक्तियों को बहुत नष्ट करती है। इसलिए मन और बुद्धि बहुत कमजोर होने लगते हैं। तो विशेष रूप से जो अनावश्यक इच्छाएं हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, स्वयं के लिए विशेष रूप से उनको छोड़ दिया जाए। दूसरी बात, और कौन सी चीज है जो मन को भटकाती है? एक स्वभाव, एक कौन सा स्वभाव है जो मन को भटकाता है, जिसकी बड़ी आवश्यकता है जीवन को सहज बनाने के लिए। जैसे सहज नेचर हो, इजी नेचर, वैसे ही कौन सी नेचर न हो, चिड़चिड़ापन न हो। जैसे आप देखते हैं क्रोध बहुत भटकाता है मनुष्य को, एक बार अगर गुस्सा आ जाए तो मन एकाग्र नहीं होगा सारा दिन, और हमें अपनी संपूर्णता को क्रोध को जीतने के द्वारा मापना चाहिए। किसी बात में हमारे मन में भी क्रोध उठता है तो अभी संपूर्णता हमारी दूर है। तो मन चिड़चिड़ा न हो छोटी बातों में, और चिड़चिड़े का आधार क्यों चिड़चिड़ा होता है, देखो आप स्वयं को देखो, हमारी इच्छाओं के अनुसार काम न होने से मन चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि हमारी इच्छाओं के अनुसार ही काम हो, इसलिए अपनी नेचर को जरा सरल कर दें, ध्यान दें कि हमें चिड़चिड़े रहना नहीं है, जरा धैर्यचित रहना है, जरा अपनी स्थिति में रहना है, जरा दूसरों को स्नेह और सहयोग देकर चलना है, खत्म हो जाएगा, थोड़ा मीठापन से रहना है। और जो बाबा ने कहा थोड़ा सा लूज करो कुछ चीजों को, कई बार आप देखेंगे दूसरे व्यक्ति ने गलती कर दी हो, सीरियस गलती भी की हो, उसी टाइम आप उसको कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं रहता, रिएक्शन हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा छोड़ दो उसको, जरा टाइम दो सोचने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति गलती करने के बाद स्वयं भी जानता है कि उसने गलती की है और वो भी सोचता उसके बारे में, लेकिन जब हम तुरंत कदम उठा लेते हैं तो उसको सोचने का मौका नहीं देते, रिएक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको सोचने का मौका दें, फिर जब स्थिति उसकी नॉर्मल हो तब कुछ कहें तो काम भी सुधर जाएंगे और अपना चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। तो धैर्यता से, मीठेपन से, थोड़ा अपने को संभालते हुए इस चिड़चिड़ेपन की वृत्ति को समाप्त करें। थोड़े सवेरे उठे, चाय ठीक नहीं मिली, चिड़चिड़े हो जाएं, भोजन अच्छा न मिले, चिड़चिड़े हो जाएं, या मान लो कभी आप सवेरे देर से उठे और स्वयं से ही चिड़चिड़े हो जाएं, ऐसा भी तो होता है ना, उठे खुद देर से, अब जो रास्ते मिला उस पर ही गुस्सा, गलती खुद की है लेकिन गुस्सा दूसरों पर। तो अपनी कोई गलती भी हमें चिड़चिड़ा न बना दे, जब कोई भी गलती हो जाए तो जल्दी अपने को ठीक कर लेना चाहिए, ये भी एक कला है जीने की, जल्दी अपने को संभाल ले। बड़ी से बड़ी बात भी हमसे हो गई हो तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, हो गई, अब तो यही किया जा सकता है कि हम अपनी स्थिति को फिर से ठीक करें। इस तरह चिड़चिड़ेपन को समाप्त करके हम अपने मन को एकाग्र करने में मदद लें। और भी कोई चीज है जो मन को भटकाती है? ठीक है, और आसक्तियां, देहधारियों से लगाव और आसक्तियां, बहुत लोग यहाँ आजकल मधुबन में बहुत पत्र आते हैं बाहर वालों के, अज्ञानियों के, अपनी परेशानियों का वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि हमें आप कुछ मदद कर दो, और सबकी परेशानियों के मूल में एक ही बात दिखाई देती है कि उनका लगाव होता है कहीं, किसी का बच्चे से लगाव है, बहुत प्यार है बच्चे से, और बच्चा बिगड़ रहा है, बिगड़ बच्चा रहा है और उनकी अपनी स्थिति भी बिगड़ते बिगड़ते टेंशन, और वो सोचते हैं कि इससे तो अच्छा मर जाओ, इससे तो अच्छा सुसाइड कर लो। बच्चे का लगाव उनको मृत्यु के संकल्प पैदा करने लगता है, तो लगाव और आसक्तियां बड़ी परेशान कर रही हैं संसार को आज भी। इनसे हम धीरे धीरे अपने को हटाते चले तो वैराग की, ये एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए त्याग की भावना, इच्छाओं का त्याग, वैराग की स्थिति। अब वैराग की ओर तो हमें बढ़ना ही चाहिए, अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? समय हमें वैराग दिलाएगा और तब हम समय के अधीन माने जाएंगे, समय के मालिक नहीं। इसलिए ज्ञान युक्त होकर अब हमारे पास ज्ञान है और आने वाले समय की पहचान है, हमें चलना है घर, इसके लिए ज्ञान युक्त वैराग अपने जीवन में लाएं। हमारा वैराग ड्राई न हो जाए, शुष्क न हो जाए, दुनिया वालों की तरह न हो जाए। दुनिया वालों का वैराग कैसा होता है? कभी कभी शमशानी के साथ कि वैराग हुआ, काम छोड़ दिया, वैराग हुआ भाई अब हम नौकरी नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, वैराग आ गया, वैराग आ गया, अब हम बच्चों की तरफ देखेंगे नहीं, मोह हो जाता है इससे, इनकी पालना नहीं करेंगे। ये अपना वैराग नहीं है, अपना वैराग बड़ा रॉयल और बड़ा ज्ञान युक्त है, जिसमें सब कुछ अपने कर्तव्य निभाते हुए भी हमें बुद्धि से ऊपर हो जाना होता है, उपराम, आसक्तियों को, उनमें लगाव को खत्म कर देना होता है। और वैसे भी अब चलना है तो मैंने जैसे शुरू में एक बात कही थी कि जो भाई बुजुर्ग हो चुके हैं अथवा जो अपने लौकिक कार्यों से थोड़े निवृत्त हो सकते हैं, बच्चे बड़े हो गए उनको संभाल सकते हैं, वो अब आने वाले समय का पूरा लाभ उठाएं, अपने को डिटैच कर लें और तपस्या में लगें। ये तपस्या जन्म जन्म काम आने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति और भाग्य है। अब केवल अपने को उलझाए न रखें, और उलझाए क्यों रखता है मनुष्य? वो ये सोचता है अभी बच्चे समझदार नहीं हुए, वो संभाल नहीं पाएंगे मेरा काम, वो बिगाड़ देंगे, ये सोच के वो अपने को वहां अटकाए रखता है। ये सोचना ठीक है या गलत? ये गलत है। आप एक तरफ होके उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं सब कुछ, लेकिन जब तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं देंगे वो अनुभवी कैसे बनेंगे? बड़े बड़े राजा छोटी आयु में मर गए और उनके छोटे छोटे लड़कों ने राजाई संभाली। कैसे संभाली? मंत्रियों ने उन्हें सहयोग दिया, धीरे धीरे वो अनुभवी हो गए। तो मैं हूं तब तक ही काम ठीक चलता है, इस संकल्प को थोड़ा हल्का कर दें, समर्पित करें संकल्प को और अपने को डिटैच करके तपस्या की ओर बढ़ें। इस तरह ये कुछ नियम आप बना लें, रोज थोड़ा सा एकांत, रोज कुछ चीजों का अभ्यास, स्वमान की कुछ बातों का अभ्यास, ऐसे केवल 5 बातें अपने पास रखें, ज्यादा नहीं, जिनको रोज रिवाइज करना है, जिनका रोज अभ्यास करना है, तो 5 बातें ही जीवन को फुल रखने में मदद करें। जैसे कहावत है ना, स्थिर कौन होता है, घड़े का उदाहरण देते हैं ना, घड़े में पानी जब फुल होगा स्थिर होगा, आधा भरा होगा तो छलकेगा। तो हम में भी एकाग्रता के लिए यही बात सत्य है, अगर हम खुशी से फुल रहेंगे, अगर हम ज्ञान से स्वयं को फुल रखेंगे, अपने को आनंदित रखना जानते होंगे, तो मन फुल होने के कारण जल्दी एकाग्र हो जाएगा। नहीं तो आप मन की सूक्ष्म गति को देखो, मन क्यों जल्दी भाग जाता है इधर उधर? उसे सुख की, खुशी की, आनंद की तलाश है सूक्ष्म में, उसकी ये सूक्ष्म एक इच्छा है, उसे ये चीज मिले, और जब ये चीज उसको नहीं देते हम, तो वो उनकी तलाश में इधर उधर देखने लगता है। तो हम ये चीजें उसको देना सीखें, और ये चीजें मिलेंगी हमारे अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। खुशी कहाँ से मिलती है हमें? संकल्प से, आनंद संकल्प से मिलता है, शांति संकल्प की देन है। ऐसे संकल्पों का खजाना भी हम अपने पास बढ़ाएं, जिसके द्वारा मन आनंदित रहे, फुल रहे, तब ये मन एकाग्र होगा। और इसके साथ अभ्यास करते चलें, ऐसे नियम बनाकर अपने जीवन को सहज करें, और देखो 1 मिनट बैठ के मन बिल्कुल शिव बाबा में लग जाए। ये तीसरा नेत्र शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर दो 1 मिनट, और कब ये स्थिर होगा? जब इसमें कोई भी गंदगी किचरा नहीं होगा। आंखों में यदि कोई तिनका पड़ जाए तो आंख भी स्थिर नहीं होती। ऐसे ये बुद्धि नेत्र बिल्कुल स्वच्छ रहे, डिस्टरबेंस ना हो तब ये स्थिर होगा लंबा समय। तो अभ्यास करें एक मिनट तक बिल्कुल शिव बाबा के ज्ञान स्वरूप का दर्शन करता रहे, परम धाम में शिव बाबा के तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करता रहे एक मिनट, फिर इसको बढ़ाओ। इस तरह आप लक्ष्य बनाओ कि एक हफ्ते में हमें अपनी एकाग्रता को एक मिनट तक बढ़ाना है, केवल केवल एक मिनट। दूसरे हफ्ते में उसे दो मिनट तक, तीसरे में तीन तक। तीन मिनट एकाग्र होने के बाद एकाग्रता सहज होने लगेगी और आपको लगेगा कि जब आप बैठेंगे ज्यादा ज्यादा समय तक एकाग्रचित्त स्थिति का अनुभव होगा। इस तरह सत्यता की शक्ति में स्थित होकर अपने को एकाग्र करें और आने वाले समय का पूरा लाभ उठाएं। चैलेंज लेकर आ रहा है हमारे सामने, अपने को तैयार कर दें इस चुनौती को सहज सामना करने के लिए। तो अभी हम सब बैठेंगे बाबा की याद में, जानकी दादी जब तक आए, बहुत एकाग्र होकर एक ही संकल्प आपके सामने है, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। हम आत्मा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठी हैं और निरंतर हमारे ऊपर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही है। ओम शांति।